प्रश्न 211 9 श्रव्य काव्य गद्य की अन्य विधाएं। निबंध। गद्य साहित्य में निबंध का महत्व। गद्यम कवि नाम निक्षम वदन्ति। गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वास्तव में निबंध में ही हम गद्य का निजी रूप देखते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं में जैसे जीवनी आदि में तो गद्य की भाषा एक माध्यम मात्र है, किंतु निबंध में वह अपनी पूर्ण शक्ति और सच सच के साथ प्रकट होती है। निबंध में ही गद्य लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है और शैली ही व्यक्ति है कि उक्ति साहित्य की इस विधा के संबंध में पूर्णतः सार्थक होती है। काव्य की इस विधा में सभी तत्व रहते हैं, किंतु इसमें शैली को कुछ अधिक महत्व मिला है। कोई विषय निबंध के क्षेत्र से बाहर का नहीं है। इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, आलोचना, जीवन मीमांसा, कथा यात्रा सभी इसके व्यापक क्षेत्र के भीतर आते हैं। शैली की विशेषता विविध प्रकार के विवेचनों और वर्णनों को निबंध की संज्ञा प्रदान करती है। साहित्य के इतिहास में निबंध पीछे की कला है। वह अपने लिए साहित्य की सभी विधाओं से सामग्री ग्रहण करती है। लक्षणा, व्यंजना, हास्य व्यंग्य आदि शैली के सभी साधन इस विधा की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। निबंध के भीतर प्रबंध का सा तारतम्य रहता है, किंतु एक संग्रह के भीतर निबंधों में मुक्तक की सी स्फुटता रहती है। यह कहानी और खंड काव्य के अधिक निकट है। अर्थ और परिभाषा। हिंदी में निबंध शब्द ऐसे के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति में पूर्व पश्चिम का सा भेद है। संस्कृत शब्द निबंध का अर्थ है जिसमें निशेष रूप से बंध या संगठन हो। बंध शब्द का निबंध में भी वही अर्थ है जो बंध का प्रबंध काव्य में है, अर्थात तारतम्य और संगठन। इसके विपरीत अंग्रेजी शब्द ऐसे का अर्थ है प्रयत्न। यूरोप में इस विधा पृष्ठ 212 के जन्मदाता फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन ने इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है। उनके निबंधों में संबद्धता का अभाव सा है। उसने अपनी कल्पना की लगाम ढीली कर रखी थी और उसके विचार स्वाभाविक विचार श्रृंखला का अनुकरण करते थे। उसके निबंध एक कल्पनाशील मन के विचरण मात्र है। डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा में भी अंग्रेजी निबंध को असंगठित, अपूर्ण और अव्यवस्थित मन का विचरण कहा गया है। ए लॉस्ट टैली ऑफ माइंड एन इरेगुलर अनडेस्टेड पीस नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस। हडसन एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर पृष्ठ 332 से उद्धृत। अंग्रेजी निबंध ऐसे का शाब्दिक और प्रारंभिक अर्थ यह आवश्यक था, किंतु लेखकों की रुचि श्रृंखला की ओर बढ़ती गई। इसमें अन्य तत्वों की अपेक्षा बुद्धि तत्व का अधिकाधिक समावेश होने लगा है और असंबद्धता निबंध का व्यावर्तक गुण नहीं रहा, वरन वह एक दोष की कोटि में आ गया है। इस प्रकार व्यवहार में अब पाश्चात्य शब्द ऐसे और हिंदी शब्द निबंध प्रायः समानार्थक हो गए हैं। फिर भी उसमें अपने नाम का थोड़ा बहुत प्रभाव शेष है ही। इस बदलते हुए दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे के अंग्रेजी कोश में दी हुई परिभाषा से मिलता है। देखिए, ए कंपोजिशन ऑफ इमॉडरेट लेंथ ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ब्रांच ऑफ स्टडी और ओरिजिनली इम्प्लाइंग वांट ऑफ फिनिश एन इरेगुलर अनडेक्स्टेड पीस बट नाउ सेड ऑफ ए कंपोजिशन मोर और लेस एलेबरेट इन स्टाइल। स्टेली थॉट लिमिटेड इन रेंज हडसन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर पृष्ठ 331-332 से उद्धृत। इसमें जॉनसन की परिभाषा को प्रारंभिक बतलाकर शैली की विशेषता पर बल दिया गया है। वास्तव में यूरोप और भारत दोनों देशों में निबंध साहित्य इतना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है कि निबंध शब्द को कुछ लक्षणों के घेरे में बांधना कठिन हो जाता है, किंतु फिर भी नीचे की बातें प्रायः सभी निबंध में पाई जाती हैं। एक, व वह अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य रचना के रूप में होता है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि निबंध गद्य में ही लिखा जाए, अंग्रेजी में पॉप्स एसे ऑफ मैन और हिंदी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हे कविते पद्य के ही निबंध हैं। तथापि अधिकांश निबंध गद्य की ही विधा माने जाते हैं। विलायत में लोक का दार्शनिक प्रबंध जो करीब 400 या 500 पृष्ठ का होगा के नाम से प्रसिद्ध है, किंतु इससे यह न अनुमान करना चाहिए कि निबंध इतना बड़ा भी हो सकता है। संभव है लेखक ने शील संकोचवश उसे ऐसे का ही नाम दिया हो। दो, उसमें लेखक का निजीपन और व्यक्तित्व झलकता रहता है। पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को उजल कर सकता है, किंतु निबंध में यह व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकता। पृष्ठ 213। लेखक जो कुछ लिखता है उसको अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है, उसके पीछे उसकी निजी प्रेरणा दिखाई देती है। यदि लक्षणा या व्यंजना के विषय में कोई ऐसा लिखा जाए जिसमें केवल शास्त्रीय मत ही दिया हो तो वह किसी पुस्तक का अध्याय बन सकता है, निबंध न होगा। निबंध तभी होगा जबकि वह लेखक के निजी दृष्टिकोण से देखा गया हो। 3, निबंध में अपूर्णता और स्वच्छता के रहते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है। वह एक प्रकार से गद्य का मुक्त काव्य है। उसमें प्रगीत काव्य का सा निजीपन रहता है। जिस प्रकार कहानी जीवन के एक पहलू की झांकी है, उसी प्रकार निबंध एक दृष्टिकोण है। उसके विषय का पूर्ण प्रतिपादन आवश्यक नहीं है। कहानी का उदय तथ्य की झलक से होता है। उसी प्रकार निबंध भी एक नई झलक लेकर आता है। 4, निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। उसमें प्रतिभा की चमक दमक रहती है और वह वर्णन मात्र नहीं होता है। दार्शनिक निबंध भी दार्शनिक ग्रंथों की अपेक्षा अधिक सजीव होगा। उसमें शैली के उत्कर्ष के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिक प्रयोग और स्वल्प मात्रा के में अलंकारों का भी समावेश किया जा सकता है। निबंधकार अपनी प्रतिभा के बल से साधारण को भी असाधारण बना देता है। जीवन की सिक्ता भी उसकी प्रतिभा के प्रकाश में रजत कणों की भांति जगमगा उठती है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। निबंध का विषय विस्तार। निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं है। निबंध कुछ नहीं से लगाकर विश्व की अनंतता में आने वाली जितनी वस्तुएं, भाव और क्रियाएं हैं, उन सब पर लिखे जा सकते हैं। यद्यपि हिंदी में निबंध साहित्य अंग्रेजी का सा नहीं है, तथापि इसका विषय वैविध्य निराशाजनक नहीं है। विशेषता जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूरे 100 वर्ष भी नहीं हुए, समझदार की मौत, बात, वृद्ध माँ, धोखा, दांत, आप, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कल्पना, आत्मनिर्भरता, आंसू, चंद्रोदय, कवि और चितेरे की डाढ़ा मेड़ी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, रामलीला, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, कवि और कविता, हंस का निरचिर विवेक, दमयंती का चंद्रो पालंब, नल का दस्तूर दूत कार्य, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव शंभु के चिट्ठे के निबंध, श्री बाल मुकुंद गुप्त, कछुआ धर्म और मारिस मोर कुठाऊ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मजदूर और प्रेम, आश्रम की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह, रिद्धि सिद्धि, श्री गोपाल राम गमरी, कविता क्या है, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र वाद, लज्जा और ग्लानी, पृष्ठ 214, भय उत्साह, पंडित रामचंद्र शुक्ल, समाज और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्यिक चंद्रमा, श्री वियोगी हरि, गंगाबाई, पद्मावत की कहानी, केशव दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़तवाल, रामानुजाचार्य, लुकाछिपी, श्री नलिनी मोहन सान्याल, अनुप्रास की खोज, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इक्का हाँ नहीं, पंडित सद्गुरु शरण अवस्थी, बाल स्मृति, अन्य भाषा के भेद, साहित्य और राजनीति, कवि चर्चा, हिमालय की झलक, श्री सिया राम शरण गुप्त, अशोक के फूल, प्रायश्चित की घड़ी, मेरी जन्मभूमि, भारतीय फलित ज्योतिष, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी इन पंक्तियों के लेखक की साहित्य की तीसरी उपेक्षिता भैंस भेड़िया धसान हीनता ग्रंथि इत्यादि इत्यादि साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। निबंधों को हम चार विभागों में बांट सकते हैं, एक वर्णात्मक, दो विवरणात्मक, तीन विचारात्मक और चार भावात्मक। इन प्रकारों के मिश्रण से और भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं। वर्णात्मक निबंधों में वस्तु को स्थिर रूप से देखकर वर्णन किया जाता है, इसका संबंध अधिकतर देश से है। विवरणात्मक का संबंध अधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। विचारात्मक में तर्क का सहारा अधिक लिया जाता है, यह मस्तिष्क की वस्तु है। भावात्मक निबंधों का संबंध हृदय से है। यद्यपि काव्य के चारों तत्व कल्पना तत्व रागात्मक तत्व बुद्धि तत्व और शैली तत्व सभी प्रकार के निबंधों में अपेक्षित रहते हैं, तथापि वर्णात्मक और विवरणात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता रहती है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को मुख्यता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप से वर्तमान रहता है। वर्णात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता की और कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मक और भावात्मक का भी मिश्रण होना संभव है। इन निबंधों में अलग अलग शैलियां पाई जाती हैं। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली जैसे आचार्य शुक्ल जी की है और व्यास शैली जैसे आचार्य श्याम सुंदर जी की है मिलती है। आचार्य शुक्ल जी ने विचारपूर्ण निबंधों का आदर्श इस प्रकार दिया है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे हुए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 215। आचार्य शुक्ल जी ने स्वयं इस आदर्श का पालन किया था, किंतु यह आदर्श विशेषता समास प्रधान शैली का है। समास प्रधान शैली में गागर में सागर अर्थात थोड़े में बहुत कहने की प्रवृत्ति रहती है और व्यास प्रधान शैली में वस्तु को उचित फैलाव के साथ समझाकर कहने की ओर झुकाव होता है। वर्णात्मक एवं विवरणात्मक निबंधों में भी प्राय व्यास शैली का प्रयोग होता है। भावात्मक निबंधों में भी व्यास शैली तो रहती है, किंतु भावावेश के न्यूनाधिक के कारण कई श्रेणियां हो जाती हैं और उसमें धारा शैली के साथ विच्छेद शैली का भी समावेश हो जाता है। विचारात्मक निबंधों की समास शैली के दो उदाहरण आचार्य शुक्ल जी लिखित चिंतामणि भाग एक में के दिए जाते हैं। दुखी की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। क्रोध उस चीज के प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। करुणा से क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार व अनुमान से उत्पन्न होता है। करुणा शीर्षक निबंध से बिंब ग्रहण कराने के चित्रण के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है जो विभाव में दिखाई पड़ता है। काव्य में विभाव मुख्य समझना चाहिए। भावों के प्रकृति आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथा तथ्य प्रत्यक्षीकरण कवि का पहला और सबसे आवश्यक काम है। यूं तो जिस प्रकार विभाव अनुभाव आदि में हम कल्पना का प्रयोग पाते हैं उसी प्रकार उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी, पर जब रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरता है। रस का आकार खड़ा करने वाला जो विभाव वन व्यापार है वही कल्पना का सबसे प्रधान कार्य क्षेत्र है, किंतु वहाँ उसे यो ही उड़ान भरना नहीं होता, उसे अनुभूति या रागात्मक वृत्ति के आदेश पर चलना पड़ता है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य से विचारात्मक निबंधों में व्यास शैली। भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है, अतः केवल आध्यात्म पक्ष में ही नहीं लौकिक आचार विचारों तथा राजनीतिक तक में उसका नियंत्रण स्वीकार। पृष्ठ 216 किया गया है मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, भारतीय साहित्य की विशेषता। आरोग्य रक्षा के नियम माँ बाप को न मालूम रहने से उनके बाल बच्चों को जो भोग भुगतने पड़ते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आफतें आती हैं, उनका ठौर ठिकाना नहीं। हजारों बच्चे तो माँ बाप की असावधानी और मूर्खता के कारण पैदा होते ही मर जाते हैं। जो बचते हैं उनमें लाखों अशक्त, निर्बल और जन्म रोगी होते हैं और करोड़ों ऐसे निरोगी और सबल नहीं होते जैसे होने चाहिए। अब इन सबको आप जोड़ डालिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि माँ बाप की नादानी के कारण संतति को कितनी हानि उठानी पड़ती है, कितना दुख सहना पड़ता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिक्षा शीर्षक निबंध से विचारात्मक निबंधों के आलोचनात्मक, कविशात्मक, विवेचनात्मक आदि कई प्रकार होते हैं। व्यास शैली में एक ही बात समझा समझा कर कई रूप में कही जाती है। वर्णात्मक निबंधों में व्यास शैली, निर्मल वैत्रवती पर्वत को बेदार कर बहती है और पत्थरों की चट्टानों से समभूमि पर जो स्वयं पथरीली है गिरती है, जिससे एक विशेष आनंददायक वाद्य नाद मीलों से कर्ण कुहर में प्रवेश करता है और जल कर्ण उड़ उड़कर मुक्ताहार की छवि दिखाते हैं और रवि किरण की संयोग से सैकड़ों इंद्रधनुष बनाते हैं। नदी की थाम में नाना रंग के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, जिन पर वेग से बहती हुई धारा नवरत्नों की चादर पर बहती हुई जल धारा की छटा दिखाती है। कृष्ण बलदेव वर्मा के बुंदेलखंड पर्यटन से काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित निबंध माला भाग 1 पृष्ठ 83। यह तो बेजान चीज का वर्णन हुआ, इसमें संस्कृत तत्समता का प्राधान्य है। समाज शैली में तो प्राय संस्कृत शब्दों का बाहुल्य रहता ही है। श्रीमती महादेव वर्मा द्वारा लिखा हुआ जंग बहादुर नाम के पर्वतीय कुली का वर्णन लीजिए। पर्वतीय पद और पत्थरों की चोट से टूटे नाखून और चुटीली उंगलियों के बीच में ढाल बनी हुई मूंछ की चप्पल, मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। पांव से दो बालिश्त, ऊंचा और ऊनी सूती पैबंदों से बना हुआ पजामा मनुष्य की लज्जाशीलता की विडंबना जैसा लगता है था। किसी पृष्ठ 217 से कभी मिले हुए पुराने कोट में नीचे की मटमैले अस्तर की झांकी देती हुई ऊपरी तहदार तार फट कर झालरदार हो उठी थी और अब अपने पहनने वाले को एक झबरे जंतु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली दोपलिया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहां तहां झांक कर मैले पानी और उसके बीच बीच में झांकते हुए मेवार की स्मृति करा देते थे। श्रीमती महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं से विवरणात्मक, श्री सिया राम शरण गुप्त के हिमालय की झलक शीर्षक निबंध से उसका विवरणात्मक अंश दिया जाता है। लखनऊ से रात को 10:30 बजे गाड़ी छूटती थी। कुछ पहले ही स्टेशन पहुंच गया। इरादा था कि कुछ अच्छी सी जगह पा सकूं। मित्र ने इंटर क्लास में बैठने का आग्रह कर दिया था। वह दर्जा कुलीन गरीबों का दर्जा है। हम जैसे अनेक दूसरे जन भी दर्जा बढ़ाने की धुन में रहते हैं, इसलिए भीड़ की आशंका थी। तांगे से उतरते ही कूली ने बताया कि इंटर में बैठिएगा तो आगे एक जगह गाड़ी बदलनी होगी। तीसरे दर्जे का एक डिब्बा सीधा काट गोदाम को जाता है। आकाश बादलों से घिरा था, रात अंधेरी थी, पता नहीं चलता था कहाँ आकर गाड़ी रुकी और फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है। अज्ञात और अदृश्य की ओर बढ़े जा रहे थे। फिर फिर भी निश्चिंता थी, सो सकते थे पर सो नहीं सके। पानी बरस जाने से लैंप के आसपास और पूरे डिब्बे में पतंगों की भरमार थी। इन बिना टिकटों की संख्या का प्रश्न ही क्या। अपने प्रदीप्त प्रेमी के निकट आकर आत्मसमर्पण का अधिकार उनका था। झूठ सच, साहसपूर्ण कार्यों के विवरण जैसे शिकार संबंधी लेखों में अथवा अन्य लेखकों के एवरेस्ट की चढ़ाई या कैलाश यात्रा संबंधी लेखों में मिलते हैं। विवरणात्मक लेखों की ही संज्ञा में आते हैं। थोड़ी भावुकता लिए हुए विवरणात्मक निबंध के उदाहरण महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह के राजपूतों का उत्थान आदि ऐतिहासिक निबंधों से मिलेंगे। भावात्मक निबंधों में प्रायः तीन प्रकार की शैलियां होती है, एक धारा शैली, दूसरी तरंग शैली और तीसरी विक्षेप शैली। धारा शैली में भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्रायः एक गति से चलती है, किंतु तरंग शैली में वे भाव लहराते हुए से प्रतीत होते हैं। तरंग की भांति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हैं। विक्षेप शैली में वह कुछ कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और नियंत्रण का अभाव रहता है। तीनों ही शैलियों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। प्रश्न 218। भावात्मक निबंधों की धारा शैली, जो धीर हैं, जो द्वेग रहित हैं, वही संसार में कुछ कर सकते हैं। जो लोहे की चादर की भांति जरा ही गर्म हो जाते हैं और जरा ही में ठंडे हो जाते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, मसल है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है, वह गंभीर और अथाह होता है। समुद्र की तरह मर्यादा पालन में उसकी यह दशा है कि आनंद और ऐश्वर्य रूपी अनेक नद नदियाँ उसमें गिरती हैं, पर क्या मजाल जो वह जरा भी मर्यादा का उल्लंघन करे। उसकी परिपूर्णता को देखिए, तार रूपी सूर्य दिन रात उसे तपाया करते हैं। यही नहीं, चिंता रूपी विचार बड़वाग्नि दिन रात उसी में जला करती है, पर उसमें जरा भी कमी नहीं होती है। राय कृष्णदास की धीर शीर्षक लेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ, निबंध माला भाग एक पृष्ठ 110। इसमें कुछ अधिक ओजमयी भाषा सरदार पूर्ण सिंह के भावात्मक निबंधों में दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप सरदार जी के मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध से एक उदाहरण दिया जाता है। तारा गणों को देखते देखते भारत वर्ष अब समुद्र में गिरा के गिरा, एक कदम और धड़ाम से नीचे। कारण केवल इसका यही है कि यह अपने अटूट स्वप्न में देखता रहा है और निश्चय करता है कि मैं रोटी के बिना जी सकता हूँ, पृथ्वी से अपना आसन उठा सकता हूँ, योग सिद्धि द्वारा सूर्य और ताराओं से गुण भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लहरों पर बैठकर बेखटके सो सकता हूँ। यह इसी प्रकार के स्वप्न देखता रहा, परंतु अब तक यह न संसार ही की और न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध हुई। यदि अब भी इसकी निद्रा न खुली तो बेधड़क शंख फूंक दो, कूच का घड़ियाल बजा दो, कह दो भारतवासियों का इस अपार संसार से कुछ हुआ। तरंग शैली धारा और विक्षेप शैली के बीच की चीज है। बीच की चीज पर लेविल लगाना कठिन हो जाता है। फिर भी श्री माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता का निम्नलिखित उदाहरण उसका कुछ आभास दे सकेगा। मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ, मेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो, कलम की जीभ को बोल लेने दो, किंतु हृदय और मसी पात्र दोनों तो काले हैं। तब मेरा प्रयत्न चातुर्य का अर्ध विराम, अलहड़ता का अभिराम केवल श्याम मात्र होगा, परंतु यह काली बूंदे अमृत बूंद बिंदुओं से भी अधिक मीठी, अधिक आकर्षक और मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। मैं अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ, परंतु तुम सीधे कहाँ बैठते हो, तुम्हारा चित्र बड़ी टेढ़ी खीर है, सिपह सालार तुम देवत्व को मानत्व की चुनौती हो, हृदय से छनकर धमनियों में दौड़ने वाले पृष्ठ 219 रक्त की दौड़ हो और जो और हो उन्माद के अतिरेक के रक्त तर्पण भी। आह, कौन नहीं जानता कि तुम किरणों की वंशी की धुन हो, धन वह जो गोकुल से उठकर विश्व पर अपनी मोहिनी का सेतु बनाए हुए है, काल की पीठ पर बना हुआ वह पुल मिटाए मिटता नहीं, भुलाए भुलता नहीं। ऋषियों का राग, पैगंबरों का पैगाम, अवतारों की आन, युगों की चीरती किस लालटेन के सहारे हमारे पास तक आ पहुंची, वह तो तुम हो परम प्रकाश, स्वयं प्रकाश। और आज भी कहां ठहर रहे हो? सूरज और चांद को अपने रथ के पहिए बना सूझ के घोड़ों पर बैठे बड़े ही तो चले जा रहे हो। प्यारे, ऐसे समय हमारे संपूर्ण युग का मूल्य तो मेल ट्रेन से में पढ़ने वाले छोटे से स्टेशन का सा भी नहीं है, नहीं होता। साहित्य देवता, पृष्ठ 1 से 6। भावात्मकता निबंधों में विक्षेप शैली। वैसे भी भावात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व की न्यूनता रहती है, किंतु विक्षेप शैली के निबंधों में इसका और रास्ता हो जाता है। विक्षेप शैली का एक उदाहरण श्री वियोगी हरि के साहित्यिक चंद्रमा से दिया जाता है। हे मृगलांशन, पाप छिपाए नहीं छिपता, किसी न किसी दिन उजागर हो ही जाता है। करोड़ों वियोगनियों का रुधिर पान करके तुम कुछ मोटे नहीं हो गए? घटने बढ़ने का असाध्य रोग भी नहीं दूर हुआ? हाँ, मुंह बेशक काला हो गया, तुम्हारा यह कलुष कलंक मरने पर भी न छूटेगा। मदिरा पान क्या बट्टे खाते जाएंगे? वियोगियों को जला देना क्या हंसी खेल है? अभी तो जरा कालिख लगी है, कुछ दिनों में मुंह काला हो जाएगा। तुम्हारी कालिमा पर भी कवियों ने कई कल्पनाएं की हैं। हिंदी निबंध माला, पृष्ठ 180-181। इसमें मिली जुली शैली का एक उदाहरण महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह के ताज शीर्षक लेख से दिया जाता है। अंतिम क्षण वे सर्वदा के लिए वियोग हो रहा था, देखती आंखों शाहजहां का सर्वस्व लुप्त रहा था, और वह भारत सम्राट हताश हाथ पर हाथ धरे बेबस बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था। सिंहासनारूढ़ हुए कोई 3 वर्ष भी नहीं बीते थे कि उसकी प्रेतमा इस लोक से विदा लेने की तैयारी कर रही थी। शाहजहां की समस्त आशाओं पर, उसकी सारी उमंगों पर पाला पड़ रहा था। हाय, अंत हो गया, सर्वस्व लुट गया, पर प्रेमी जीवन यात्रा का एकमात्र साथी सर्वदा के लिए छोड़कर चल बसा। भारत सम्राट शाहजहां की प्रेसी सामग्री मुमताज महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गई। शाहजहां भारत का सम्राट था, जहान का शाह था, किंतु वह भी अपनी प्रेसी को जाने से न रोक सका। पृष्ठ 64 संख्या तृतीय 1951। पृष्ठ 220। विक्षेप शैली में जब भावावेश का वेग मर्यादा से बाहर होने लगता है, तब उसमें उच्च श्रृंखलता सी आ जाती है और वह प्रलाप की कोटि में गिनी जाती है। विक्षेप और प्रलाप शैली में माला का ही अंतर है। हास्य व्यंग्य लेख भी विषयानुकूल भावात्मक या विचारात्मक लेखों की संज्ञा में आ सकते हैं। कुछ लोग इनकी पृथक एक विधा स्वीकार करते हैं। शैलियों की विभाजन में और भी कई आधार हैं। व्यक्ति प्रधान और निर्व्यक्तिक, संस्कृत तत्सम प्रधान और उर्दू मिश्रित, इत्यादि इत्यादि अच्छी शैली के गुण। शैलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते हैं। किसी में तत्सम शब्दों का बाहुल्य होता है, तो किसी में तद्भव शब्दों का, और किसी में उर्दू हिंदी की गंगा जमनी धारा बहाई जाती है। यद्यपि विषय की कठिनाई से शैली में दुरूता आ जाती है, तथापि शैली में प्रवाह के साथ प्रसाद गुण उपादेय होता है। क्रम, संगति, संगठन और अनवीती शैली के आंतरिक गुण हैं। शैली में भी अनेकता में एकता उत्पन्न करना वांछनीय रहता है। निबंध के एक एक वाक्य में आकांक्षा एक शब्द दूसरे की प्रतीक्षा सा करता मालूम हो और वाक्य की पूर्ति अंत में हो, ऐसे वाक्य की अंग्रेजी में पीरियड अर्थात वाक्योच्चय कहते हैं। योग्यता, एक शब्द एक दूसरे के अनुकूल हो। सींचना पानी से ही होता है, अग्नि से नहीं। आदि गुण अपेक्षित होते हैं। सार्थक उपयुक्त शब्दों की पद मैत्री और क्रम से उतार चढ़ाव, भाव का भी उतार चढ़ाव और ध्वनि का भी। जैसे बड़े शब्द पीछे आवे, वे गुण शैली को प्रसाद में बना देते हैं और मुहावरों का प्रयोग और हास्य व्यंग्य का पुट उसे चलतापन प्रदान करता है। लक्षणा व्यंजना के प्रसाधन जो कि काव्य को उत्तमता प्रदान करते हैं, गद्य शैली में भी उचित मात्रा में आदरणीय समझे जाते हैं। शैली को न तो अलंकारों से बोझिल बनाना चाहिए और न उसमें तुकबंदी लगाकर उसे पद्य का आभास देना चाहिए। वाक्यों के एक से संगठन जब तक विशेष रूप से समीकृत वाक्यों द्वारा प्रभाव उत्पादन अभीष्ट न हो तथा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचाना चाहिए। अधिक भावुकता प्रदर्शन आजकल के युग को मान्य नहीं है। प्रभाव उत्पादन एक विशेष कला है जो अभ्यास से ही प्राप्त होती है। तो जो बात थोड़े शब्दों में कही जा सकती है, उसके लिए शब्दों का विस्तार बाहुल्य वांछनीय नहीं है। लाघों का गुण गद्य में भी प्रशंसनीय है। नाविक के तीर चाहिए जो देखत में छोटे लगे, घाव करे गंभीर।